जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, परमहंस परिव्राज गचार्य स्तोत्र शास्त्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रोफेसर स्पॉन फाउंडर आचार्य शिव दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौणताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गोरामा। मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दसम स्कंद अध्याय 65 बलराम का वृंदावन जाना। इसके पहले हमने सुना था राजा नृग का उद्धार। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि एक बार अपने शुभ चिंतक मित्रों को देखने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए और उन्होंने नंद गोकुल की यात्रा की। तो बलराम जी को विशेष उत्सुकता है वहां जाने की। कृष्ण ने जब से छोड़ा है वृंदावन तब से नहीं गए। तो इसके कई कारण हैं कि कृष्ण नहीं गए। एक कारण तो ये भी है कि राधा रानी को शाप मिला है, कृष्ण के विरह 100 वर्ष के विरह का शाप मिला है कि राधा रानी को कृष्ण का सौ वर्ष का वियोग प्राप्त होगा। तो एक तो ये भी कारण है और भी कई कारण है। तो बलराम जी जो है ना अकेले द्वारका से आए कहां वृंदावन में। बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथमा स्थिता सुहृदृक्षोत्कंठा प्रयो नंद गोकुलम। तात्पर्य लिखा है जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने इशारा किया है हरिवंश में भी बलराम जी के श्री वृंदावन जाने का वर्णन मिलता है। कदाच कश्चिदथ कालस्य स्मृत्वा गोपेश सौहृदम जगामे को ब्रजम रामा कृष्णस्यानुमते स्थितः। ग्वालों के साथ प्रगाढ़ मैत्री का स्मरण करके भगवान बलराम भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर अकेले ही ब्रज गए। वृंदावन के भोले भाले वासी खिन्न थे, क्यों कि कृष्ण अन्यत्र जाकर रहने लगे। ब्रज में कृष्ण ने 11 साल बिताए है ना, तो वो याद जो है ब्रजवासियों को भूलती नहीं है कृष्ण की। अब कृष्ण मथुरा को छोड़ करके द्वारका चले गए, तो और दूर चले गए वृंदावन से, तो ब्रजवासी बहुत दुखी हैं। इसलिए भगवान बलराम उन लोगों को सांत्वना देने के लिए वहां गए। तो बलराम जी का जाना बहुत जरूरी है उनको सांत्वना देने के लिए। आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि शुद्ध प्रेम के महासागर भगवान कृष्ण ब्रज क्यों नहीं गए। एक प्रश्न उठता है कि कृष्ण जो चूंकि परम प्रेमी है, और जो प्रेमी कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं तो कृष्ण क्यों उनसे दूर रहते हैं, तो ब्रज क्यों नहीं गए। इसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने दो श्लोक उद्धृत किए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक निकाले हैं। प्रेसी प्रेम विख्याता पितरावती वत्सल प्रेम वश्य कृष्णस्तान त्यक्त्वा नः कथमेष्यति इति मत्वैव यदवः प्रत्यबध्नन् हरेर्गतौ ब्रज प्रेम प्रवर्धे स्वलीलाधीनत्वमीयुतः। यादवों ने सोचा भगवान की प्रेमिकाएं अपने शुद्ध प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके माता पिता उनके प्रति अति वत्सल हैं। भगवान कृष्ण शुद्ध प्रेम के वशीभूत हैं, अतः यदि वे उन्हें देखने जाएंगे तो फिर किस तरह उन्हें छोड़कर वापस आएंगे। इसलिए यदुवंशी लोग कृष्ण को अनुमति नहीं देते हैं वृंदावन जाने के लिए। अक्रूर भी जो है जब वृंदावन से कृष्ण को मथुरा लाए थे तो बड़ी कठिनाई हो रही थी उनको कृष्ण को लाने में, क्योंकि छोड़ नहीं रहे थे ब्रजवासी लोग छोड़ नहीं रहे थे। और अक्रूर जी को कुछ जो है ना इसमें गुस्सा भी आया, कुछ अपराध हो गया तो उससे जो है फिर अक्रूर को शाप मिल गया। और चूंकि कृष्ण बलपूर्वक अक्रूर जी बलपूर्वक कृष्ण को गोपियों से दूर ले गए तो अक्रूर को फिर शाप के कारण क्या हुआ द्वारका छोड़ के भागना पड़ा, कृष्ण से डर करके भागना पड़ा। तो ये यदुवंशी लोग जो है ना बहुत डरते हैं वृंदावन से, बहुत डरते हैं कि कृष्ण अगर जाएंगे तो आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनको अनुमति नहीं मिल रही है कृष्ण को। इस विचार से यादवों ने भगवान हरि को जाने से रोका। वे जानते थे कि वे उन लीलाओं के अधीन हो जाते हैं जिनमें भी ब्रजवासियों के नित्य प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और भी कुछ कारण है कि कृष्ण वृंदावन नहीं जाते हैं। गोपाल चंपू में यह भी लिखा है कि कृष्ण के बहुत शत्रु हैं, है ना, तो मथुरा को भी छोड़ करके दूर आ गए कि मथुरा भी बहुत आक्रमण करते थे शत्रु लोग, है ना। और वो अगर देखेंगे कि कृष्ण का संबंध वृंदावन से है तो वृंदावन में भी जो है ना वो आक्रमण करेंगे, है ना, तो कष्ट देंगे, तंग करेंगे नंद महाराज को और गोपों को। इसलिए कृष्ण मथुरा से और दूर चले गए द्वारका, जिससे कि वृंदावन कोई उनका शत्रु ना जाए। बहुत शत्रु कृष्ण के थे उस समय। अब बलराम जी जब गए वृंदावन तो क्या हुआ, दीर्घ काल से वियोग की चिंता सहने के कारण गोपों और उनकी पत्नियों ने बलराम का आलिंगन किया। तब बलराम जी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, उन्होंने स्तुतियों द्वारा बलराम का हर्ष के साथ सत्कार किया। परिस्वक्तस चिरोत्कंठैर गोपैर गोपी भिरे रामोभिवाद्य पितरा वासीर्भिरभिनन्दितः। तात्पर्य लिखा है, इस स्थिति के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ये श्लोक निकाला है। नित्यानंद स्वरूपोपि प्रेम तप्तो ब्रजौकसाम यो कृष्णमपि त्यक्त्वा यस्तम रामम मुहुस्तु महाम। बलराम जी का हम बार बार ये शोकान करते हैं, यद्यपि वे नित्यानंद है किंतु ब्रजवासियों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्हें वेदना का अनुभव हुआ, अतः वे भगवान कृष्ण को छोड़कर भी उन्हें देखने के लिए गए। अब इसमें यह लिखा है कि गोप और गोपियों ने बलराम जी का आलिंगन किया, तो इसका मतलब क्या है? ये गोपियां माता के समान है, नंद यशोदा के समान जो है ना, जो गोप और गोपियां हैं उन्होंने बलराम जी का आलिंगन किया। और फिर किस प्रकार से प्रार्थना की बलराम जी की, मतलब आशीर्वाद भी देते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। प्रार्थना करते हैं ईश्वर मान करके, आशीर्वाद देते हैं बालक मान करके। तो उन्होंने नंद यशोदा ने प्रार्थना की और आशीर्वाद दिया। हे दशारह वंशज, हे ब्रह्मांड के स्वामी, तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहो। ये कहकर उन्होंने श्री बलराम को अपनी गोद में उठा लिया, उनका लिंगन किया और अपने नेत्रों के आंसुओं से उन्हें भिगो दिया। चिरम न पाही दासारह सानुजो जगदीश्वर इत्यारोप्यंक मालिंग नेत्र शिशि चतुर्जले। तात्पर्य लिखा है, इस श्लोक पर श्रील जीव गोस्वामी ने इस प्रकार टीका की है। नंद तथा यशोदा ने भी श्री बलराम से प्रार्थना की, तुम अपने छोटे भाई सहित हमारी रक्षा करते रहो। इस तरह उन्होंने इस बात के लिए सम्मान व्यक्त किया कि वे बड़े भाई हैं और उन्होंने ये भी दिखलाया कि वे उन्हें अपने ही पुत्र के रूप में कितना मानती हैं। तब क्या हुआ, बलराम जी ने अपने से बड़े जो ग्वाले थे यानी पिता के समान थे उनके प्रति समुचित सम्मान प्रकट किया, और जो छोटे थे तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। वे आयु के अनुसार सबसे मिले, कौन कितनी बड़ी आयु का है, कौन कितनी छोटी आयु का है, तो किसका किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, यथा योग्य आयु के अनुसार और मैत्री के अनुसार, पारिवारिक संबंध के अनुसार हर एक से हंस करके मिले और हाथ मिलाया, जिनसे हाथ मिलाना चाहिए उनसे हाथ मिलाया। तत्पश्चात विश्राम कर लेने के बाद उन्होंने आसन ग्रहण किया और सारे लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए, क्योंकि एक गांव है तो गांव में जो है ना कोई काम नहीं होता, कोई नया समाचार मिले तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, सब लोग फुर्सत में रहते हैं। जैसे बलराम जी आए द्वारका से आए, है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये घटना है, इसलिए जितने ब्रजवासी हैं सब एकत्र हो गए, बलराम जी को चारों से घेर लिया। किस लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ बातें, समाचार और उपदेश, कई प्रकार की जो ना जो बातें हैं वो जानने के लिए बलराम जी के चारों ओर एकत्र हो गए। और ये सब जो ब्रजवासी हैं कैसे हैं, कृष्ण को सर्वस्व अर्पित कर चुके हैं, तो इन्होंने द्वारका के प्रियजनों के बारे में पूछा ब्रजवासियों ने कि द्वारका में क्या हालचाल है। बदले में बलराम जी ने पूछी ब्रजवासियों की कुशल मंगल। गोप वृद्धां च विधिवन् यविस्तैरभिवन्दितां यथा वयो यथा सख्यम यथा संबंधमात्मनः समुपेत्याथ गोपालां हास्य हस्त ग्रहादिभिः विश्रांतम सुखमासीनम पप्रच्छो पर्युपागतम। पृष्टाचानामयं स्वेषु प्रेम गंगदया गिरा कृष्णे कमले पत्राक्षे सन्यस्ताखिल राधसः। अब जो ग्वाले हैं वो क्या कहते हैं, हे राम हम सब ब्रजवासी, अच्छा हमारे सारे संबंधी ठीक से तो है ना, मतलब द्वारकावासी, और हे राम क्या तुम सभी लोग अपनी पत्नियों और पुत्रों सहित अब भी हमें याद करते हो? हम तो याद करते ही हैं, हमारा तो काम ही याद करना, लेकिन तुम लोगों का तो बहुत काम है, तो कभी याद आती है? तुम लोग तो बहुत व्यस्त रहते हो, शहर के लोग बड़े व्यस्त रहते हैं है ना, तो कहते हैं कि तुम लोग तो बहुत व्यस्त रहने वाले हो है? और राजकार्य भी बहुत ज्यादा आप लोगों का है, तो लड़ाइयों में भी व्यस्त रहते हैं और शहर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो कभी हमारी याद करते हो क्या आप लोग? कच्छिन्नो बांधवाराम सर्वे कुशलम आसते कच्चित स्मरत है नो राम योयम दारे सुतान्वितान। ये हमारा परम सौभाग्य है कि पापी कंस मारा जा चुका है और हमारे प्रिय संबंधी मुक्त हो चुके हैं। हमारा ये भी सौभाग्य है कि हमारे संबंधियों ने अपने शत्रुओं को मार डाला और पराजित कर दिया और एक विशाल दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली है। तो ब्रजवासी याद करते हैं कि पहले कंस का कितना भय था, यदुवंशी जो है मथुरा में भी नहीं रह पाते थे, मथुरा को छोड़ छाड़ करके कहां कहां बेचारे घूमते फिरते थे, कोई स्थान नहीं था उनके रहने का। तो केवल कंस ही नहीं मारा गया बल्कि मथुरा से द्वारकापुरी बस गई, बहुत सुरक्षित दुर्ग बन गया, शत्रुओं से बहुत पूरी सुरक्षा हो गई द्वारका में। तो पहले से अब बहुत परिवर्तन हो गया है। दृष्ट्या कंसो हता पापो दृष्ट्या मुक्ता सुरजना निहत्य निर्जित्य रिपोन दृष्ट्या दुर्गम समाश्रिता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा बलराम जी के साक्षात दर्शन से गौरवान्वित हुई गोपियों ने हंसते हुए उनसे पूछा नगर की स्त्रियों के प्राण प्रिय कृष्ण सुख पूर्वक तो हैं। गोपियां केवल माधुर्य भाव का ही चिंतन करती हैं, तो वो यही सोचती हैं कि हमसे अब जो है कृष्ण दूर होकर के नए नए स्त्रियों के चक्कर में जरूर होंगे। तो कहते हैं कि नगर की स्त्रियों के साथ तो अब कृष्ण बहुत सुखी होंगे, मतलब हमारे साथ तो उनको सुख नहीं प्राप्त हुआ कि हम गांव की अशिक्षित स्त्रियां हैं, है ना, तो कृष्ण अब वहां पर तो सुख पा रहे होंगे, तो इसीलिए कृष्ण हमें छोड़ के गए हैं क्योंकि गांव की स्त्रियां हैं ज्यादा शिष्टाचार नहीं जानती हैं और जो है ज्यादा चालाक होती नहीं है, ज्यादा चालाकी की बातें भी नहीं कर पाती हैं, तो जो है ना हमको छोड़ करके वहां गए हैं, अब वहां तो आनंद जरूर लेते होंगे कृष्ण। गोप्यो हसंत्याप प्रच्छु राम संदर्शनाद्रिता कच्चिदास्ते सुखम कृष्ण पुरस्त्रिय जन वल्लभ। जैसे गोपी जन वल्लभ कहा जाता है ना, तो उन्होंने कहा कि गोपी जन वल्लभ नहीं है ये, अब क्या है पुर स्त्री जन वल्लभ, नगर की स्त्रियों के वल्लभ है। तात्पर्य में लिखा है आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण की प्रिय संगिनियां उन्मत्त होकर हंस रही थीं क्योंकि वे अपने प्रेमी कृष्ण के वियोग में अति दुख का अनुभव कर रही थीं। भगवान बलराम ने अपने छोटे भाई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का अतीव आदर किया। इस तरह राम संदर्शनाद्रता शब्द का अर्थ हुआ कि बलराम जी ने गोपियों का आदर किया, और पहले दिया गया अर्थ भी कि गोपियों ने बलराम जी का आदर किया, दोनों है। अब ये गोपियां क्या कहती हैं बलराम जी से, क्या वे अपने परिवार वालों को विशेष से अपने माता पिता को याद करते हैं? मतलब हमको तो याद करते नहीं है, वो तो सीधी बात है। उनसे कृष्ण से आसन नहीं करना चाहिए कि कृष्ण हमको याद करेंगे, क्योंकि नगर की स्त्रियों से अब मिलते हैं तो अब हमको तो बिल्कुल भूल ही गए हैं, अब हमारा तो कोई स्थान ही नहीं है उनके हृदय में, लेकिन अपने माता पिता को तो याद करते होंगे। क्या आपके विचार में भी अपनी माता को एक बार भी देखने वापस आएंगे? हमसे तो मिलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये अपनी माता को तो देखने आए हैं, क्या बलशाली भुजाओं वाले कृष्ण हमारे द्वारा सदा की गई सेवा का स्मरण करते हैं? कुछ कुछ संभावना है, शायद हमारी सेवा का स्मरण करते होंगे, शायद कभी कभी भूले भटके तो पूछ रही हैं कि क्या स्मरण करते हैं। कच्चित स्मरति वहां बंधु पितरम मातरम च सह अप्यतो मातरम द्रष्टुम सकृत अप्यागमिष्यति अपि वा स्मरते अस्माकम् अनुसेवां महाभुजः। तात्पर्य लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि गोपियां फूलों की माला गूंध कर निपुणता से सुगंध लेप करके और फूलों की पंखुड़ियों से पंखे बनाकर शैया बनाकर कृष्ण की सेवा करती थीं। इन प्रेम पूर्ण सरल कार्यों से गोपियां भगवान की सबसे बड़ी सेवा करती थीं। अब गोपियां क्या कहती हैं? हे दासार है, हमने कृष्ण की कारण अपनी माताओं पिताओं भाइयों पतियों पुत्रों बहनों का भी परित्याग कर दिया। यद्यपि इन पारिवारिक संबंधों को छोड़ पाना कठिन है, किंतु हे प्रभु, अब उन्हीं कृष्ण ने सहसा हम सबों को त्याग कर हमारे साथ के समस्त स्नेह बंधनों को तोड़ दिया और वे चले गए। इतने पर भी कोई स्त्री उनकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकती है? मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि नगर की स्त्रियां जो है ना, इतनी चालाक होने के बावजूद भी कृष्ण पर विश्वास करती हैं। कृष्ण का पता नहीं कैसा सम्मोहन है, कि ये तो बिल्कुल झूठे हैं, कृष्ण तो बिल्कुल झूठे हैं, कपटी हैं, धोखेबाज हैं, लेकिन नगर की स्त्रियां पता नहीं कैसे विश्वास करती हैं। मातरम पितरम भ्रातृन पतीन पुत्रान ससुरनपि यदर्थे जहे मैं दासार है दुष्ट जान सुजनान प्रभु ताना संध्या परित्यज्य गता संचिन्न सौहृद कथम नु तादृशम स्त्री भीर न श्रद्धेयते भासितम। हाँ, क्या कह रही गोपियां? नगर की बुद्धिमान स्त्रियां, हम लोग तो मूर्ख हैं जो कृष्ण पर विश्वास किया हमने और सब कुछ छोड़ा, अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ा, लेकिन वो तो बुद्धिमान है, तो ऐसे कृष्ण के वचनों पर कैसे विश्वास करती हैं? ये बड़ा आश्चर्य है। कृष्ण का हृदय तो बहुत स्थिर है, अस्थिर अस्थिर मतलब चंचल है, कृष्ण का हृदय तो बड़ा अचंचल है, और जो इतने कृतज्ञ है, कोई कितना भी उनके लिए त्याग करे लेकिन वो कुछ नहीं सोचते, वो तुरंत त्याग देते हैं। वे उन पर इसलिए विश्वास कर बैठी क्योंकि वे बहुत अद्भुत ढंग से बोलते हैं, बातें बनाने में बहुत चालाक हैं कृष्ण। नगर की स्त्रियों को भी जो ना अपने चक्कर में डाल दिया है, उनकी सुंदर हंसी से जो चितवन काम वासना उत्पन्न करती है। कथम नु ग्रहण अत्यन अवस्थित आत्मनो वचा कृतज्ञस्य बुधा पुरस्त्रियः ग्रहणन्ति वै चित्र कथा से सुंदर स्मितावलोकोच्छसित स्मरातुरम्। तात्पर्य लिखा है श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक की प्रथम दो पंक्तियां कुछ गोपियों की उक्ति है और अन्य दो पंक्तियों में कुछ के उत्तर है। तो इस श्लोक में प्रश्न उत्तर दोनों दे दिया ना गोपियों ने, तो कुछ गोपियां प्रश्न कर रही हैं, तो बलराम जी तो कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं कि क्या उत्तर दें, तो वो खुद ही दूसरी प्रकार की गोपियां उत्तर देती हैं कि कारण ये है। हे गोपियों, उनके विषय में बातें करने से क्या लाभ है? कृष्ण के विषय में बातें करने से क्या लाभ है? कृपा करके किसी अन्य विषय पर बात चलाओ, यदि वे हमारे बिना अपना समय बिताते हैं तो हम भी उसी तरह से अपना समय बिताएंगी कृष्ण के बिना। किम न तत कथया गोप्या कथा कथयता पर या चश्मा भीर बिना कालो यदि तस्य तथैव नः। तात्पर्य लिखा है श्रील श्रीधर स्वामी ये सारा कर रहे हैं कि यहाँ पर गोपियां सूक्ष्म रीति से संकेत करती हैं कि भगवान कृष्ण उन सबों के बिना अपना समय सुखपूर्वक बिताते हैं, जबकि वे सब अपने स्वामी के बिना सर्वाधिक दुखी हैं। भगवान और उनमें यही अंतर है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसकी टीका इस प्रकार की है, गोपियों ने अपने को अन्य स्त्रियों से पृथक मानते हुए इस प्रकार सोचा, यदि अन्य स्त्रियां अपने प्रेमियों के साथ रहती हैं तो वे जीवित रहती हैं, और यदि उनसे विलग हो जाती हैं तो मर जाती हैं, किंतु हम ना तो जीवित हैं और ना मरती हैं। विधाता ने हमारे मस्तक पर यही भाग लिखा है हम इसकी कौन सी औषधि ढूंढ निकाले हैं। तो गोपियों की कितनी भाग्यशाली स्थिति है, कितनी भाग्यशाली हैं गोपियां कि वे अपने मन को कृष्ण से हटाना चाहती हैं तो उनका मन नहीं हटता कृष्ण से। और हमारा कैसा हाल है कि हम कृष्ण में मन लगाना चाहते हैं तो मन लगता नहीं है, हट जाता है कृष्ण से। तो ये सौभाग्य है। ये शब्द कहती हुई तरुण गोपियों को भगवान कृष्ण की हंसी याद आई। जैसा कहा कि उनके बिना हम समय बिताएंगे, तो तुरंत उनका जो है स्मरण हुआ कृष्ण की हंसी का, उनकी मोहक बातों का स्मरण हुआ, आकर्षक चितवन का, उनके चलने का ढंग, प्रेमपूर्ण आलिंगन का स्मरण हुआ। इस तरह वे विलाप करने लगी। इति प्रहसितम सौरेर जल्पितम चारु वीक्षितम गतिम प्रेमे परिसंगम स्मरन्त्योरुरुदु स्त्रियः। तात्पर्य लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका इस प्रकार है। गोपियों ने सोचा कृष्ण रूपी चंद्रमा अपनी अमृतमयी हंसी के तीरों से हमारे हृदयों को विदीर्ण करता हुआ दूर चला गया, अतः जब वह नगर की स्त्रियों के साथ भी वैसा ही करता है तो वे क्यों नहीं मर जाएंगी। इन विचारों से अभिभूत होकर तरुण गोपियां श्री बलदेव की उपस्थिति में भी रोने लगी। अब बलराम जी जो है, बलराम जी का एक नाम संकर्षण है, तो संकर्षण का मतलब क्या है, जो मेल मिलाप कराए, है ना। तो कृष्ण के प्रति जो है जो शिकायत है उसको दूर करने के लिए किसी प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं गोपियों को है? तो बलराम जी बहुत निपुण है, कभी झगड़ा हो तो कई प्रकार से बीच बचाव कर देते हैं है? तो इससे कहते तुम बुरा नहीं मानना, उससे कहते तुम बुरा नहीं मानना, है ना। इस तरह से बीच बचाव कराने में बहुत निपुण है। तो गोपियों को जो है भगवान कृष्ण के गुप्त संदेश सुनाए, तो भगवान बलराम जो है गोपियों को कृष्ण के गुप्त संदेश सुना करके उनको धीरज बंधाते हैं। इन संदेशों ने गोपियों के हृदय को गंभीरता से स्पर्श किया। संकर्षणस्ता कृष्णस्य संदेश हृदयंगमे सांत्वयामास भगवान नानानुनय को विदः। तात्पर्य में लिखा है श्री जीव गोस्वामी ने विष्णु पुराण का ये श्लोक उद्धृत किया है जो गोपियों के लिए बलराम द्वारा लाए गए कृष्ण के संदेश को बताने वाला है। श्रीमद् भागवत में इतनी लिखा है कि नाना अनुनय को विदः, कई प्रकार से समझाने में वो निपुण है बलराम जी। तो गोपियों को जना धीरज बंधाया, लेकिन विष्णु पुराण में श्लोक है संदेश है साम मधुर प्रेम गर्भ गर्भित रामेण स्वासिता गोप्या कृष्ण श्याति मनोहर। भगवान बलराम ने गोपियों को भगवान कृष्ण के सर्वाधिक मोहक संदेश देकर सांत्वना दी, जिनमें मधुर अनुनय विनय था और जो उनके प्रति शुद्ध प्रेम से प्रेरित थे, जिनमें रंच मात्र भी गर्म नहीं था। मतलब बलराम जी बहुत विनम्रता पूर्वक समझाते हैं कि कृष्ण में, कृष्ण के अंदर बहुत प्रेम है तुम्हारे प्रति। जबकि द्वारका में वो शिकायत करते थे कृष्ण की कि कृष्ण का जो ना प्रेम नहीं है, झूठा प्रेम है कृष्ण का, ये ब्रजवासी लोग इतना चाहते हैं और कृष्ण नहीं जाना चाहते हैं, केवल दिखाते हैं कृष्ण प्रेम, ये प्रेम नहीं है। ये वहां पर गए तो ऐसे बताया कि कृष्ण असली प्रेम है, समझो कृष्ण का कितना प्रेम है, कृष्ण कितनी याद करते हैं। अब वो वहां फंसे हुए हैं वो दूसरी बात है, इस तरह से बताया। श्री जीव गोस्वामी ये टीका करते हैं कि संकर्षण नाम से ये अभिप्रेत है कि बलराम ने कृष्ण को अपने मन में प्रकट होने के लिए आकर्षित किया और इस तरह गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन कराया। हाँ, बलराम ने इस प्रकार से श्री कृष्ण की प्रेमिकाओं को सांत्वना दी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विविध संदेश भेजे, कुछ में गोपियों के लिए दिव्य ज्ञान का उपदेश था, कुछ अनुनय विनय और अन्य संदेश भगवान की शक्ति को प्रकट करने वाले थे। हृदयंगम में शब्द के दिए हुए अर्थ के अतिरिक्त ये शब्द भी ये सूचित करता है कि ये संदेश गोपनीय थे। हाँ, हृदयंगमे का मतलब हृदय को छूने वाले संदेश, और हृदयंगमे का मतलब गुप्त भी है। अच्छा, भगवान बलराम वहां 2 मास तक रहे, मधु और माधव 2 मास रहे, और रात में अपनी गोपियांकाओं को माधुर्य सुख प्रदान करते रहे। 2 मासो तत्र चावासीन मधु माधव मे विचा राम छपासु भगवान गोपी नाम रतिमा वहन। तात्पर्य लिखा है श्रील श्रीधर गोस्वामी कहते हैं कि जिन गोपियों ने श्री बलराम के साथ उनके गोकुल आने पर माधुर्य सुख प्राप्त किया, उन्होंने उस समय अल्पायु होने के कारण कृष्ण के रास नृत्य में भाग नहीं लिया था। इसकी पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत का श्लोक 10:15:8 गोपियों अंतरेण भुजियो उद्धृत किया है, जो ये बताता है कि कुछ विशेष गोपियां बलराम की संगिनियों के रूप में रहती हैं। यही नहीं, जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब कृष्ण ने संघ चूड़ का वध किया, उस समय मनाए गए होली का उत्सव में बलराम ने जिन गोपियों के साथ रमण किया, वे कृष्ण द्वारा रमण की गई गोपियों से भिन्न थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इस व्याख्या से सहमत हैं। तो जो गोपियां बलराम के साथ हैं वो अलग हैं, है ना, और गर्ग संहिता में बताया भी गया है कि अलग प्रकार की गोपियां हैं। वो क्या है? नाग कन्या गोपियां, नाग कन्या है। हाँ, तो ये शेष नाग हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि पाताल में शेष जी हैं, तो उनका जब दर्शन करती हैं नाग कन्याएं तो प्रेम से बेहवन हो जाती हैं, तो उनकी पूजा भी नहीं कर पाती हैं, तो उनकी भी कामना पूरी करने के लिए जो है वो गोपियां बनी और उनका संग बलराम जी के साथ हुआ। आगे, अनेक स्त्रियों के संग भगवान बलराम ने यमुना नदी के तट पर एक उद्यान में रमण किया। ये उद्यान पूर्ण चंद्रमा की किरणों से नहलाया हुआ था और रात में श्री कुमुदिनियों की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु के द्वारा आलिंगित था। पूर्ण चंद्र कलामृष्टे कौमुदे गंध वायुना यमुनो पवने रेमे सेविते स्त्री गणेर्वृता। तात्पर्य लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि बलराम जी की माधुर्य लीला, हाँ, तो बलराम जी की इस लीला का स्थान रामघाट के नाम से प्रसिद्ध है और इसी स्थान पर बलराम जी ने यमुना जी को आकर्षित किया था। और ये जो रामघाट है ये श्री कृष्ण की रास स्थली से काफी दूर है। अब वहां पर क्या हुआ, वरुण देव द्वारा भेजी गई बारुणी मदिरा एक वृक्ष के कोटरे से बहने लगी, अपने मधुर गंध से सारे वन को और सुगंधित बना दिया। वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्ष कोटरा पतंती तन्वनम सर्वम सुगंधेनाध्यवासय। तात्पर्य लिखा है श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि वारुणी जो मदिरा है वो क्या है, शहद के आसवन से प्राप्त एक द्रव है। मतलब शहद को मतलब गर्म करके उसकी भाप बनाई जाए, फिर उसको ठंडा किया जाए, तो वो द्रव, तो विशेष देवी पेय है। हरिवंश से निम्नलिखित उद्धरण भी उन्होंने दिया है, समीपम प्रेषिता पित्रा वरुणेन समानक है। यहाँ देवी वारुणी बलराम से कहती हैं, हे निष्पाप, मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा, अब उसकी सुगंध जो है जब बलराम जी के पास आई वायु के द्वारा, उस धारा की सुगंध बलराम जी के पास आई, उन्होंने सूंघा तो वे वृक्ष के पास गए और अपनी संगिनियों के साथ उस पे पिया, उस पे को पिया। तम गंधम मधु धाराया वायनो पैर तम बलहा आग्रायो प्रगत सत्र ललनाभे समम पप। जब गंधर्व गण उनका यशोगान कर रहे थे तो बलराम जी तरुण स्त्रियों के तेजोमय वृत्त के मध्य रमण कर रहे थे। वे कैसे लग रहे हैं? ऐरावत हाथी के समान, जो हथिनियों के झुंड में रमण कर रहा हो। ऐरावत हाथी इंद्र का सफेद रंग का है, इसलिए उनकी तुलना ऐरावत हाथी से की है। उपगी ये मानो गंधर्वैर वनिता सोभी मंडले रे मे करेणु यूथे सो माहेन्द्र एवं। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक फूलों की वर्षा की और मुनियों ने बलराम जी के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की। ने दुर दुंद भयो व्योमनी बमृसो कुसमेर मुदा गंधर्वा मुनियो रामम तनवीर रे तदा। जब उनके कार्यों का गान हो रहा था, बलराम जी का जिस समय गुणगान हो रहा था, तो हल धारण किए हुए मदोन्मत्त जैसे होकर वे अपने संगिनियों के साथ विविध वनों में घूम रहे थे। उनकी आंखें नशे में चूर थी। उपगीय मान चरितो वनिता भीर हलायुधा बने सो विचरत छिवो मद बेहवल लोचन। बलराम जी हर्ष से उन्मत्त हैं, फूल मालाओं को धारण किए हैं। उनमें से एक माला है बैजयंती माला, एक कान में कुंडल धारण किए हैं। बलराम जी की विशेषता क्या है? उनके एक कान में कुंडल है और मुस्कान भरे कमल मुख पर पसीने की बूंदें कैसी लग रही हैं? ओस के कण जैसी। तब उन्होंने यमुना जी को बुलाया जिससे भी उसके जल में क्रीड़ा कर सकें, किंतु यमुना जी ने उनके आदेश की उपेक्षा इसलिए कर दी क्योंकि वे मदोन्मत्त थे। इससे बलराम क्रुद्ध हुए और अपने हल की नोक से नदी को उन्होंने खींचना शुरू कर दिया। स्त्रंगवे के कुंडलो मत्तो वैजयंत्या चमालया बिभ्रत स्मृत मुखाम भोजम स्वेद प्रालय भूषितम साजुहाव यमुनाम जल क्रीडार्थमीश्वर निजम वाक्यम अनादृत्य मत इत्यापगाम बलहम अनागतम हलाग्रेण कुपितो विचकर्ष। अब बलराम जी नाराज हुए। बलराम जी क्या बोले? मेरा अनादर करने वाली पापनी तू मेरे बुलाने पर न आकर केवल मनमाने ढंग से चलने वाली है, अतः मैं अपने हल की नोक से 100 धाराओं के रूप में तुझे यहाँ विभक्त कर दूंगा। पापे तुम माम अवज्ञाय यन्नायासी मया हुता नेसे तम लांगणांग्रेण शतधा काम चारिणी। तो ये जरूरी है, इस प्रकार से गुस्सा करना जरूरी है। तो ये भगवान जो लीला कर रहे हैं तो ये शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं कि भगवान का आदेश सर्वोपरि है, है ना। और भगवान के लिए सब भौतिक जगत के नियम लागू नहीं होते हैं, है ना। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, बलराम जी के द्वारा इस प्रकार डांटी जाकर डरी हुई यमुना देवी आई और यदुनंदन बलराम के चरणों पर गिर पड़ी। कांपते हुए उन्होंने उनसे ये शब्द कहे, एवं निर्भर्षिता भीताम यमुना यदुनंदनम वाच चकिता वाचम पतिता पादयोर नृप। जयदेव गोस्वामी ने भी अपने 10 अवतार में स्तुति की है। बलराम जी के बारे में वो ऐसा लिखते हैं, वहति वहसति विषदे वसनम जलदाभम वहसि वपुषि विषदे वसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशव धृत हलधर रूपा जय जगदीश हरे। वहसि वपुषि विषदे, आपके विशाल शरीर में आपने धारण किए हैं कैसे? वसनम जलदाभम, यमुना जी के रंग के जो है ना जो वस्त्र हैं वो आपने धारण किए हैं। जलदाभम का मतलब है बादल के समान
श्यामल वस्त्र धारण किए हैं। हलहती भीति मिलित यमुनाभम, और यमुना जी की भी आभा उसमें मिल गई उनके वस्त्रों में। बादल के समान श्यामल वस्त्र हैं बलराम जी के, और यमुना जी का भी जो ना जो रंग है वो उसमें मिला हुआ है। और यमुना जी कैसी हैं, उनके हल की नोक से भयभीत हैं, तो उनके चरणों में गिरी हैं यमुना जी। और चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि भगवान चैतन्य ने भी बलराम जी के आवेश में ये लीला की थी। यमुना जी को डांट रहे हैं, पापिनी मेरे आदेश का तू पालन नहीं करती है, तेरी धारा को मैं सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु भी यमुना जी को डांटते हैं। तात्पर्य में लिखा है श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार बलराम के समक्ष प्रकट होने वाली देवी श्रीमती कालिंदी की अंश रूपा थी, जो कि द्वारका में भगवान कृष्ण की पत्नी है। श्रील जीव गोस्वामी उन्हें कालिंदी की छाया बतलाते हैं, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पुष्टि करते हैं कि वे कालिंदी की अंश है, कालिंदी नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी श्री हरिवंश से भी इस कथन के द्वारा प्रमाण देते हैं प्रत्युवाचारण वधूम, अर्थात देवी यमुना समुद्र की पत्नी है। अच्छा, यमुना जी अब प्रार्थना करती हैं, क्षमा याचना करती हैं बलराम जी से। कैसे? हे विशाल भुजाओं वाले राम, हे राम, मैं आपके पराक्रम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने एक अंश मात्र से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम, यस्य कांसेन विद्रिता जगति जगता पते। एक अंश मतलब भगवान शेष जी के रूप में बलराम जी ने जो है पूरी पृथ्वी को धारण किया है, पूरे भूमंडल को धारण किया हुआ है। और जैसे आपके सिर में सरसों का दाना हो, तो आपको पता नहीं चलेगा आपके सिर में अगर कोई सरसों का दाना कोई डाल दे, उसी प्रकार से उनके फल में उनको पता नहीं चलता है कि कौन से फल में ये पूरा भूमंडल स्थित है। हे प्रभु, आप मुझे छोड़ दीजिए। हे ब्रह्मांड की आत्मा, मैं भगवान के रूप में आपके पद को नहीं जानती थी, इसलिए मनुष्य के नियम लागू कर दिए आपके ऊपर कि आप जो ना शराब पीते हो, आप नशे में धुत हो, मैं नहीं आऊंगी इस प्रकार से। किंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ, और आप अपने भक्तों पर सदैव दयालु रहते हो। परम भावम भगवतो भगवन माम जानते मोक्तुमर्हसि विश्वात्मन प्रपन्नाम भक्तवत्सल। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब बलराम जी ने यमुना को छोड़ दिया, और जिस तरह हाथियों का राजा अपनी हथिनियों के साथ जल में प्रवेश करे, उसी तरह अपनी संगिनियों के साथ नदी के जल में प्रविष्ट हुए। ततो विमंचन यमुनाम याचितो भगवान बलहां विजगा है जलम स्त्रेवी करेणो भिरिवे भराट। इसके बाद बलराम जी ने जी भरकर जल क्रीड़ा की, और जब जल से बाहर निकले तो देवी यमुना ने उन्हें उपहार दिए, नीले वस्त्र दिए, क्योंकि बलराम जी को नीले वस्त्र चाहिए, मूल्यवान आभूषण दिए, और चमकीला गले का हार भेंट किया। कामम मृत्ये सलिला उत्तीर्णाया सितंबरे भूषणानि महारहाणि ततो कांतिम शुभम सृजम। तात्पर्य लिखा है श्रील श्रीधर स्वामी ने विष्णु पुराण से उदाहरण देकर यह दिखलाया है कि यहाँ पर उल्लिखित देवी कांति वास्तव में लक्ष्मी है। अच्छा, वरुण प्रहिता चश्मे माला अम्लान पंकजाम समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मी रयच्छताम। वरुण द्वारा भेजी गई देवी लक्ष्मी ने उन्हें नाम और जाने वाले कमल पुष्पों की माला, समुद्र की भांति नीले रंग के वस्त्रों की जोड़ी भेंट की। अच्छा, यमुना जी ने उपहार दिए वो अलग है, और ये जो वरुण के द्वारा जो भेजी गई देवी है उसने अलग से उपहार दिए बलराम जी को। भागवत के महान टीकाकार श्रील श्रीधर स्वामी ने देवी लक्ष्मी द्वारा बलराम से कहे गए कथन को श्री हरिवंश से भी निकाला है। मतलब हाँ, लक्ष्मी देवी बलराम जी से क्या कहती हैं? जात रूपमयम चैकम कुंडलम ब्रजभूषणम आदि पद्मम च पद्माख्यम दिव्यम श्रवण भूषणम देवे माम प्रतिग्रहणी स्वा पौराणी भूषण क्रियाम। हे स्वामी, आप देवी आभूषणों के रूप में अपने कानों के लिए ये हीरे से जड़ा हुआ सोने का एक कुंडल स्वीकार कीजिए। एक कुंडल भेंट किया, क्योंकि बलराम जी एक ही कुंडल धारण करते हैं कान में, और पद्म कहलाने वाला ये आदि कमल स्वीकार कीजिए। कृपया इन्हें स्वीकार करें, क्योंकि ये कार्य परंपरा के अनुसार हम कर रहे हैं। हाँ, बलराम जी ने नीले वस्त्र धारण किए और गले में सोने का हार धारण किया, सुगंधियों से लेपित और सुंदर ढंग से रंगत होकर वे ऐरावत हाथी के समान शोभायमान हुए। वसे त्वां वाससी नीले मालां मामुच्चे कांचनी रेजसलंकृतो लिप्तो महेन्द्र एव वारणः। तात्पर्य लिखा है, चंदन लेप और अन्य शुद्ध सुगंधित वस्त्रों का लेप करके बलराम जी ऐरावत हाथी के समान लग रहे थे। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित से, हे राजन, आज भी ये देखा जा सकता है कि किस तरह यमुना अनेक धाराओं में होकर बहती हैं, जो असीम बलशाली बलराम द्वारा खींचे जाने पर बन गई थीं। इस प्रकार यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित करती हैं। अद्यापि दृश्यते राजन यमुना कृष्ण वर्तमाना बलस्यानंद वीर्यस्य वीर्यं शोचयति महि। हाँ, तो राम घाट का जो स्थान है वहां पर यमुना जी का जो बहाव टेढ़ा है, तो अभी भी यमुना जी वहां जो टेढ़ी बहती हैं, तो इससे वो सूचना जो है ना याद आती है, ये लीला कि बलराम जी ने अपना बल प्रयोग किया यमुना जी के ऊपर। इस तरह बलराम जी के लिए सारी रातें ब्रज में रमण करते करते एक रात की तरह बीत गईं। उनका मन ब्रज की तरुण स्त्रियों की अद्वितीय माधुरी से मोहित था। एवं सर्वानिशायादा एके रमतो ब्रजे कामस्या क्षिप्त चित्तस्य माधुर्य ब्रज यो सीता। तात्पर्य लिखा है, बलराम जी ब्रज की तरुण एवं सुंदर स्त्रियों की मोहक लीलाओं से मुग्ध हो गए। इस तरह हर रात उनके लिए नया अनुभव था और सारी रातें इस तरह बीत गईं मानो एक ही रात हो। ये उसी प्रकार से है जैसे भगवान चैतन्य भक्तों के साथ रात भर कीर्तन करते नृत्य करते थे श्रीवास आंगन में, और दिन भर अपने दिन के काम होते थे, कोई दिन में रेस्ट नहीं करता था, विश्राम नहीं करता था। रात भर जो है कीर्तन नृत्य करते श्रीवास के घर में, और दिन में अपना जो भी घर के काम होते थे, घर के और बाहर के काम होते थे, सब करते थे, है ना। इसी पर बलराम जी भी रात भर नृत्य करते हैं गोपियों के साथ, और दिन भर ब्रजवासियों से मिलते हैं और घूमते हैं, बातें करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के अंतर्गत बलराम जी का वृंदावन जाना शीर्षक 65वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो ये श्लोक, इस अध्याय में 34 श्लोक थे, ये मैंने पूरे पढ़े। अब किसी का कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा? इनका प्रश्न है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इतना कम आराम करें, कोई तरीका हो सकता है? हमें समझना चाहिए कि हमारा शरीर भौतिक है, इस भौतिक शरीर में आवश्यकताएं हैं, क्या खाना सोना है ना, और गीता में भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, तो सही सही जो है भोजन होना चाहिए और विहार होना चाहिए, है ना। तो ये आवश्यकताएं हैं, शरीर की जितनी आवश्यकताएं उनको पूरी करना है, है ना। तो कलयुग में बहुत सरल विधि इसीलिए भगवान ने दी है कि हम जो है किसी भी समय भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये इतनी सरल विधि है, कि कोई भी स्थान है और कोई भी समय हो, आप जो है भगवान के नामों का कीर्तन कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है। तो इतना कुछ जरूरत नहीं है कि आप जो है ना बहुत काम करो और जो है विश्राम ना करो, है ना, ऐसी आवश्यकता नहीं है। जितनी विश्राम की आवश्यकता है वो आपको अपने शरीर के अनुसार देखनी पड़ेगी, और जितना आप भोजन करते हैं उसके अनुसार विश्राम की आवश्यकता है। हाँ, निद्राहार विहार एकादि भी जीतो, तो आहार को जीता तो फिर विहार निद्रा को जीता, लेकिन ये आवश्यक है कि आहार, अगर भोजन आप जो ना पर्याप्त लेते हैं तो फिर नींद उतनी आवश्यक है। अगर आप नींद नहीं लेंगे भोजन के अनुसार तो फिर आपका जो दिमाग है वो खराब हो सकता है ना, इसलिए बहुत आवश्यक है कि भोजन के अनुसार नींद ली जाए। जैसे बच्चा है तो भोजन ज़्यादा लेता है, अपने शरीर के हिसाब से भोजन की मात्रा उसकी बहुत होती है कि नहीं, तो 20 घंटे सोता है बच्चा, 20 घंटे सोता है, धीरे धीरे उसकी भोजन की मात्रा कम हो जाती है शरीर के हिसाब से, शरीर जितना बड़ा हुआ है उसके हिसाब से भोजन की मात्रा कम हो जाती है, तो फिर निद्रा कम होती है ना, फिर आगे चलकर के नींद की आवश्यकता 8 घंटे रह जाती है, 6 घंटे रह जाती है, 5 घंटे रह जाती है, है ना, और फिर आहार भोजन और कम हो जाता है वृद्धावस्था में, तो नींद की आवश्यकता और कम हो जाती है 4 घंटे, है ना। इसी प्रकार से जो ना जो भोजन है और निद्रा है उसका संतुलन होना चाहिए। हाँ, इनका प्रश्न है कि हमारे शरीर के हिसाब से कितनी निद्रा होनी चाहिए। प्रभुपाद ने बताया कितना, 6 घंटे, है ना, तो 6 घंटे, अगर 6 घंटे आपको गहरी नींद आ जाए तो जो है ना पूरा विश्राम हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर नींद नहीं आ रही है कुछ कारणों से, कुछ पेट की गड़बड़ी हो सकती है, पेट में गैस बनती है इस कारण से, तो हाँ, या भोजन समय पर नहीं होता है, हाँ तो वही चीज़ है, मतलब गैस बनती है, जब भोजन की अव्यवस्था होती है तो पेट में गैस बनती है, उससे फिर नींद नहीं आती, तो फिर विश्राम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो व्यक्ति को जो है ना अपने आवश्यकता के अनुसार देखना होगा कि कितना विश्राम करना है, है ना। और कोई प्रश्न है? उनका प्रश्न है कि बलराम जी की तुलना ऐरावत हाथी से की गई है, तो क्या शेष नाग जी का भी जो शरीर है गोरे रंग का है? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 89वें अध्याय में वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कारण समुद्र में पहुंचे तो वहां पर कारणोदक साई विष्णु थे जो शेष जी की सैया पर शयन कर रहे थे। शेष जी का शरीर शीताचलाभम बताया गया है, जिसका अर्थ है कि वे कैलाश पर्वत के समान श्वेत हैं। परंतु यहाँ पर बलराम जी की तुलना ऐरावत हाथी से की गई है, क्योंकि जब वे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐरावत हाथी अपनी मस्त चाल से चल रहा है। और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, गोपियों ने बलराम जी से कृष्ण के बारे में जो बातें कही हैं वो क्या हैं? हाँ, तो गोपियां सबसे पहले बलराम जी से पूछती हैं कृष्ण के समाचार, कि कृष्ण पुर स्त्रियों के साथ तो अब प्रसन्न हैं, क्योंकि उनको कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए, तो कृष्ण जो है ना हमारे साथ में प्रसन्न नहीं थे इसलिए हमें छोड़ करके चले गए। वो नहीं सोचते हैं कि और भी कारण हो सकते हैं, कंस का कारण था और यदुवंशियों के और भी कार्य हैं, उनका तो बस केवल चित्त कृष्ण के माधुरी में निमग्न है, डूबा हुआ है, तो कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए क्यों? क्योंकि हमें उन्होंने पसंद नहीं किया, हम गांव की स्त्रियां हैं ये पसंद नहीं किया, और वहां पर क्यों रहे हैं द्वारका में, कि शहर की स्त्रियां जो है ना ज्यादा निपुण हैं, हंसी की बातें करने में, चतुराई की बातें करने में, प्रेम की बातें करने में ज्यादा निपुण है, इसलिए पूछ रहे हैं कि कृष्ण अब उन स्त्रियों के साथ में तो सुखपूर्वक है। और फिर पूछते हैं कि अपनी माता का तो स्मरण कभी कभी करते होंगे, है ना, तो माता का स्मरण करना कर्तव्य है इसलिए, और कृष्ण का चित्त बहुत चंचल है ये कहा गोपियों ने, क्यों? क्योंकि जिनके लिए हमने अपने माता पिता और पति पुत्र सब त्यागे है, उन्होंने कुछ उसका ख्याल नहीं किया कि हमने कितना त्याग किया उनके लिए, और कृष्ण जो है एकदम एक क्षण में वो प्रेम को तोड़ करके हमारा दिल तोड़ करके चले गए। इस प्रकार से गोपियां बलराम जी को लहना देती हैं। तो बलराम जी ने फिर क्या उत्तर दिया?
हाँ,
तो बलराम जी का एक नाम संकर्षण है, इसका मतलब क्या है कि जो मेल मिलाप कराए, है ना। तो कहीं पर अगर जो है ना वो कहा सुनी होती है, तू मैं होती है, तो बलराम जी जो है मेल मिलाप कराते हैं, तो बहुत निपुण है।
हाँ,
तो बलराम जी मेल मिलाप कराने में बहुत निपुण है, और कहीं अगर इस तरह का झगड़ा हो तो वे जो है मतलब बहुत चालाकी से बात कुछ में दबाते हैं, कोई अगर कुछ कमी हो किसी की उसको दबा करके और उसको जो ना मतलब अच्छे संबंध बनाते हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण है। जैसे कि सांब को जो है दुर्योधन ने कैद कर लिया था, कृष्ण के पुत्र, तो भगवान कृष्ण यदुवंशियों की सेना के साथ हस्तिनापुर में आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन बलराम जी ने कहा नहीं अपना ही जो है वंश है, हाँ तो बातचीत कर लेते हैं, है ना। और बाद में जब जो है ना बलराम जी से भी बात नहीं बनी तो उन्होंने फिर अपना पराक्रम दिखलाया, तो किसी प्रकार से डरा करके उनको जो है रास्ते में ले आए और सांब का विवाह करा दिया। और महाभारत का युद्ध भी जो है ना बलराम जी नहीं चाहते थे कि हो, क्योंकि भाई ये आपस में जो है ना वंश की लड़ाई है, आपस में कलह नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जब देखा कि कृष्ण जो है ना पक्ष में है युद्ध करने के, तो फिर वो जो है युद्ध को छोड़ करके चले गए। अच्छा, आपका प्रश्न, उनका प्रश्न है कि भगवान कृष्ण जो है वृंदावन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनके शत्रु जो है वृंदावन में आक्रमण कर सकते हैं, कृष्ण का संबंध समझ करके वृंदावन से, तो भगवान कृष्ण तो जो है ना सब प्रकार से समर्थ हैं, तो फिर उनको डर क्यों है? हाँ, ये मनुष्य की लीला है, और वैसे तो गोपियां जो कृष्ण के विनय का अनुभव कर रही हैं तो उसमें और ज्यादा मिलन है कृष्ण से, है ना। ये तो बहुत गंभीर और बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत गहरा विषय है कि विरह में और ज्यादा कृष्ण का मिलन होता है, है ना। इसलिए भगवान चैतन्य ने इस विरह का अनुभव करने के ही लिए आए, है ना। तो कई बातें हैं, और कृष्ण का उनको जब दर्शन होता है, गोपाल चंपू में लिखा है कि कृष्ण का उनको दर्शन होता है तो वे विश्वास नहीं करते हैं गोपियां, क्यों? क्योंकि लोक दृष्टि से तो कृष्ण मथुरा में है या द्वारका में है, तो कैसे हो सकता है, लेकिन कृष्ण है साक्षात वहां, उनका उनको दर्शन देते हैं, कभी उनके पैर के कांटे निकालते हैं, है ना, कभी उनके वस्त्र संभालते हैं, है ना, लेकिन गोपियां देखती में है, लेकिन फिर उनको विश्वास नहीं होता है। तो कई बातें हैं, जैसे माता सची को भी जो है जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य है, ये माता सची जब भोग लगाती हैं और जब थाली सजाती हैं निमाई के लिए विश्वम्भर के लिए, तो भगवान चैतन्य जो है जगन्नाथपुरी से आकर के अपनी माता के घर में पूरा भोजन खा लेते हैं, है ना। और बाद में जो थाली जब माता देखती है कि खाली हो गई, तो उनको फिर जो ना संदेह होता है कि शायद मैंने भोजन बनाया ही नहीं, क्योंकि निमाई यहां थोड़ी है, निमाई तो जगन्नाथपुरी में है, तो उनको लगता है कि मैंने शायद भोजन बनाया नहीं, मैंने कुछ ऐसी याद आ रहा है कि मैंने भोजन बनाया है, मैंने भोजन नहीं बनाया, दोबारा भोजन बनाती हैं। लेकिन भगवान चैतन्य रोज उनका भोजन खाते हैं और माता सती को विश्वास नहीं होता है, इसलिए भगवान ने फिर भक्तों के हाथों संदेशा भेजा माता को कि माँ तुम रोज जो बनाती हो मैं रोज पूरी थाली भोजन खाता हूं, है ना। भगवान ने संदेशा भिजवाया माता को। इसी तरह से 100 साल के बाद जब भगवान मिले थे कुरुक्षेत्र में गोपियों से, तो गोपियों से उन्होंने बताया कि तुम लोग जो मेरा दर्शन करती हो तो इसमें विश्वास करो कि मैं सचमुच तुम्हारे साथ रहता हूं, है ना, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन विश्वास करो कि मैं सचमुच तुम्हारे साथ रहता हूं। तो ये सब बड़े रहस्य हैं। राधा रानी को भी जब 100 साल का वियोग प्राप्त हुआ तो गर्ग संहिता में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी को भी आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, हर महीने मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो नियम था भगवान का, कि हर महीने एक बार राधा रानी को भगवान दर्शन देते थे, है ना। तो 100 साल में कितने महीने हुए? 1200। तो 1200 बार भगवान ने राधा रानी को दर्शन दिया, हर महीने दर्शन देते थे, है ना। लेकिन साथ साथ जो है ना, जो मनुष्य की लीला है वो भी दिखाते हैं, है ना, कि कोई व्यक्ति जो है ना कोई कार्य करना चाहता लेकिन नहीं कर पाता, मजबूर होता है, कई प्रकार की इस भौतिक संसार में व्यवस्थाएं हैं। और इस प्रकार से गोपियों का प्रेम बढ़ता है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण गोपियों को यही समझाते हैं कि हम लोग जो है कैसे हैं, बालू के जैसे कण होते हैं, है ना, नदी में बहते हैं तो कभी मिल जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, अपना बस नहीं है। उसी प्रकार से प्राणियों का जो है अपना बस नहीं है, कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, है ना। इसी प्रकार काल की गति से हम लोग जो है विवश हैं। तो भगवान इस प्रकार से भी उत्तर दिया गोपियों को। तो ये सब जो है प्रेम बढ़ाने के लिए ये सब बातें होती हैं। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि यमुना जी जब नहीं आ रही थी, बलराम जी बुला रहे थे, तो बलराम जी ने सख्त दंड दिया या देना चाहा, सैकुंठ धाराओं में विभाजित कर दूंगा, तो ये कहाँ तक हम समझें इसको, इस बात को? नहीं, जैसा अपराध वैसा दंड, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, अनुचित नहीं है। और ये अपराध भी बहुत बड़ा माना जाएगा, ये छोटा अपराध नहीं है, क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसा, भगवान ही भोक्ता है, है ना। अगर भगवान के भोग में अगर आप बाधा डाल रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। फिर आपका जो है ना, आपके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। आपके जीवन का एकमात्र कार्य है भगवान को भोग प्रदान करना, भगवान को आनंद देना, है ना। तो जिस प्रकार से भगवान चाहते हैं उस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर समर्पित नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, है ना। और बलराम जी ने जब कहा कि सैकड़ों धाराओं में विभक्त कर दूंगा, तो कोई बहुत बड़ा दंड नहीं था, ये बहुत बड़ा दंड नहीं था। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोंडदाय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा।